ॐ रामाय राम भद्राय राम चंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिरकीर्तितेन। युधिष्ठिर का नाम सुबह पहले लेते हैं तो धर्म बढ़ता है और पापम प्रणश्यति विको वृकोदर कीर्तनेन। और भीमसेन का नाम लेने से पाप का नाश होता है। ये भीमसेन कुंती माता के वायु देवता से दूसरे पुत्र हुए हैं। जैसे युधिष्ठिर दिव्य सृष्टि है ऐसे भीम भी दिव्य दृष्टि है, दिव्य सृष्टि है। भीम छोटे से बच्चे थे उस समय, एक बार कुंती मां के हाथ से छूट गए, भारी थे शरीर में खूब, तो कुंती माता के शरीर से छूटने पर एक बड़ी सारी शिला थी, शिला पर गिर गए। कुंती माता ने देखा कि मेरा बेटा तो मर गया है, आगे देखा शिला के टुकड़े टुकड़े हो गए, छोटा सा बच्चा। ऐसे थे भीम। भीम बल में, पराक्रम में, शौर्य में, मनोबल में, शरीर बल में किसी से कम नहीं थे। अपने जमाने के योद्धाओं में भीम का नाम आता था। भीम जितने बलवान थे उतने ही भीम भोले भी बहुत थे, बहुत सरल थे, किसी की राजनीति जल्दी समझने की कोशिश भी नहीं करते और उनको राजनीति की बातें आती भी नहीं थी। उनके स्वभाव में एक ही बात थी, अन्याय सहन नहीं करेंगे, न तो खुद अन्याय करेंगे और न दूसरे का अन्याय सहन करेंगे। ये भीम का पक्का सिद्धांत था। अन्याय करेंगे नहीं और अन्याय सहेंगे नहीं। भीमसेन का कोई अन्याय बता नहीं सकता है कि भीमसेन ने यह अन्याय किया। किसी स्त्री पर कुदृष्टि की हो, किसी की वस्तु आदि की चोरी की हो, कहीं किसी पर अकारण आक्रमण करके उसका धन छीना हो, बल तो था इसमें, किसी भी राज्य पर आक्रमण करके राज्य छीने, नहीं, कभी नहीं आता भीमसेन, क्योंकि वो अन्याय के विरोधी थे, सरल भी, बहुत सरल प्रकृति के थे भीमसेन। लोग कहते हैं भीम को क्रोध आता था, बिल्कुल ठीक बात है, परंतु ये भी तो देखो कि वो अपने क्रोध को अपने भाई के अंदर जो प्रेम था उस प्रेम से उसको कम मात्रा में क्रोध रखते थे, भाई का प्रेम ज्यादा था। भीमसेन चीरहरण के प्रसंग में बहुत ज्यादा क्रोधित हुए थे। वो अपना यूं हाथ मसल रहे थे तो रोम रोम से चिंगारियां निकल रही थी। युधिष्ठिर जी ने उसके शरीर पर हाथ रखा है, युधिष्ठिर जी के हाथ में चिंगारी लगी। अरे भीमसेन क्या करते हो तुम, कि आप थोड़ा सा मुझे छूट दे दीजिए, मैं इस सभा को देख लेता हूं अभी। कि नहीं, बड़े लोग बैठे हैं, जो अन्याय बड़े लोगों के सामने हो रहा है उस अन्याय का हम लोग छोटे लोग क्या प्रतिकार करें? कि द्रौपदी को कैसे ये लोग अपमानित कर रहे हैं, कि द्रौपदी अपनी अकेलों की थोड़ी, धृतराष्ट्र महाराज की कुल वधु है, पितामह भीष्म की कुल वधु है, आचार्य द्रोण की शिष्य वधु है, कृपाचार्य की शिष्य वधु है, दुर्योधन की भाभी लगती है, द्रौपदी के साथ तुम अकेला अपना ही संबंध क्यों मानते हो? ये युधिष्ठिर महाराज ने बात कही तो वो चुप हो गए कि हम लोग पति हैं तो पत्नी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, कि बेशक कर्तव्य है, पर कब जब द्रौपदी की रक्षा करने वाले दूसरे कोई न हो तब, अभी नहीं, अभी इसकी रक्षा करने वाले बहुत बैठे हैं। कहा ये तो सब चुप हुए बैठे हैं, इसलिए क्या करें? ये वो जाने, वो क्यों चुप है, किस लिए चुप है, इसका अधिकार उन्हीं को है, अपने को बोलने का नहीं है। चुप रहो, इतना विलक्षण स्वभाव जिनका, वे भाई की बात रखने के लिए चुप हो गए। वनवास के अंदर कई बार भीमसेन उग्र हो जाते कि हम 12 वर्ष तक वनवास में रहे, फिर एक वर्ष अज्ञातवास में रहे, हम कोई गए गुजरे थोड़ा ही, हम बहुत बड़े योद्धा हैं, हमको कौन सा शस्त्र चलाना नहीं आता, हमारे पास क्या कमी है, हम कोई दुर्योधन के सेवक है क्या उसकी आज्ञा माने? मैं अभी जाता हूं और सेना सहित उसका श्रृंगार करके आता हूं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि तू अकेला ही जाएगा कि हमको भी ले जाएगा, कि आपको साथ में लेके चला जाऊं? मैं तो नहीं जाऊंगा। क्या अर्जुन को और मेरे को दो को भेज दो, पूछ लो अर्जुन से। अर्जुन ने कहा कि भीम, बड़े भाई की आज्ञा के बिना कैसे जा सकता हूं, और आप भी जाने की हिम्मत क्यों कर रहे हैं? चुप हो गए। ऐसे भी भीम ने सदा अपने अलग स्वभाव के कारण से भाइयों से नहीं तोड़ा। सब भाइयों की अलग नीति, भीम की अलग नीति, विचार में मतभेद हो सकता है, लेकिन उन्होंने मन भेद नहीं किया। सब भाइयों के साथ में अलग स्वभाव होते हुए भी सबका जो निर्णय होता उसमें अपना निर्णय मिला देते थे। दुनिया को सिखाया उन्होंने कि आपस में नहीं बनती, मतभेद है, आपको कोई क्या लगे, युधिष्ठिर को कोई बात है, अर्जुन के मन में कोई बात है, नकुल सहदेव के मन में कोई बात है, लेकिन अर्जुन के भीमसेन के मन में और ही अलग बात है। पर भीमसेन मत तो अपना रख देते हैं, पर मत भेद हो जाने पर भी मन भेद नहीं करते थे। ये सबसे बड़ा गुण था उनका। भीमसेन के व्यवहार से भीष्म पितामह भी, द्रोणाचार्य भी, कर्ण भी उसके व्यवहार से कभी नाराज नहीं हुए। पितामह भीष्म को खुली खुली बात तो बोल देते, पर आदर रखते हुए बोलते थे। द्रोणाचार्य को भी खुला बोल देते, पर आदर रखते हुए बोलते। पितामह भीष्म को साफ कह दिया था कि आज आप दुर्योधन के पक्ष में लड़ने के लिए यहां आए हैं, कोई बात नहीं, परंतु द्रौपदी के साथ अन्याय हुआ तब आपका मुख नहीं खुला और आप हम लोगों पर बाण चलाने के लिए आ गए। उस समय तो बाणी भी नहीं निकली और आपको पता है कि हम निरपराध हैं, हमारे पर आप बाण चलाने आ गए। हमने आपका क्या गुनाह किया, क्या गलती की, क्या अपराध किया हमने? भीमसेन का उत्तर नहीं दे सके। भीष्म जी ने यही कहा कि भाई क्या करूं, मैं इस राज सिंहासन से बंधा हुआ हूं। तो आप राज सिंहासन से बंधे हुए हैं, ये धर्म है, तो धर्म की तो व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी होती है पितामह। हम बच्चों को यदि मारना ही था तो बचपन में मार देते, क्यों हमको आपने पढ़ाया लिखाया पाला पोसा? दुर्योधन को भी बचपन से जानते थे, हमको भी बचपन से जानते थे। हमारे पिता मर गए, हमारे पिता का राज्य धृतराष्ट्र को मिला और धृतराष्ट्र का पुत्र उस राज्य को लेने के लिए हम लोगों को राज्य से हटाने का इतना उद्योग करता है, आप एक शब्द नहीं बोले। और आज जब ये सेना लेकर के खड़े हैं तो आप इनके पक्ष में युद्ध कर रहे हैं। होना चाहिए आपको हमारे पक्ष में। अरे हमारे पक्ष में नहीं हो तो आप कम से कम तटस्थ रह जाते हैं कि भाई परिवार का मामला है, दोनों ही मेरे बच्चे हैं, मैं किसी के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ। क्यों खड़े हो गए आप? हमारी क्या गलती है? परंतु आदर में कहीं कमी नहीं रखी। सर सैया पर पड़े हुए भीम में भीष्म पितामह, उस समय भीष्म रोज उनके पास जाते थे भाइयों के साथ और उस पितामह भीष्म से बात करते थे। इतने स्पष्टवादी, निर्भीक और बड़े विनयी और शिष्ट थे। भीमसेन के अंदर पर दुख कातरता भी थी, दूसरे का दुख देखते तो उनको दया बहुत आती थी। उनके मन में ये था कि आदमी को भगवान ने दुखी होने का जो स्वभाव दिया है वो अपने दुख के लिए नहीं दिया है, दूसरे के दुख में दुखी होना चाहिए, वो दुख अच्छा होता है। अपने लिए दुखी होना तो स्वार्थ की बात है, दूसरे के लिए दुखी होगी, दूसरा दुखी हो रहा है तो भाई अपने को उसके दुख में साथ दुखी होना चाहिए। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जब ये ब्राह्मण वेश में लाक्षागृह से बच करके चुपचाप निकल गए तब इन्होंने विचार किया कि अपन अभी प्रकट मत हो कि लाक्षागृह में हम बच गए, ऐसा प्रकट मत करो, अभी देखें दुर्योधन क्या क्या चाल चलता है, हमारे मरने की खबर उसको होती है, फिर देखें क्या क्या होता है। तो अपन छिपे हुए रहो, तो लाक्षागृह के अंदर ही सुरंग बना दी थी, सुरंग से निकल के घोर जंगल में जाकर कैसे रहे कि ब्राह्मण का वेश बना करके रहो। तो ब्राह्मण का वेश बनाए हुए एक नगरी में चले, उसका नाम था एक चक्रा नगरी। उस नगरी के अंदर भिक्षा लाते और भोजन करते थे। ब्राह्मण का काम भिक्षा लाने का है, कभी कभी भिक्षा लेने के लिए ये चारों जाते और आकर के बैठते भोजन करते तो भीमसेन की आंखों में तेज आता कि देखो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम मांग मांग के टुकड़ा खाते हैं। बड़ा क्रोध भी आता, आत्मसम्मान भी जागता, स्वाभिमान भी जगता, लेकिन युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि भीम तुम्हारे दुख को मैं समझता हूं, लेकिन ये ब्राह्मण वेश बनाया हुआ है ना, इसलिए भिक्षा के अंदर दोष नहीं है। ब्राह्मण भिक्षा के द्वारा निर्वाह करे, ये ब्राह्मण का गुण होता है। विनोद की बात यह है कि जितनी भिक्षा आती थी उस भिक्षा में मां कुंती पूरी आदि रोटियां अलग भीम के लिए रख देते थे और बाकी जो बचता उसमें ये चारों भाई और कुंती अपना निर्वाह करते थे, साहब उसके लिए अलग से रखते थे रोटियां खूब सारी। भिक्षा में आधी भिक्षा भीमसेन अकेला खाता था। खूब विनोद भी करते थे भाई लोग, भीम भैया भूखे तो नहीं रह गए। भीमसेन खूब हंसता। भीमसेन भिक्षा लेने नहीं जाता था। भीमसेन ने मना कर दिया कि मैं भिक्षा लेने नहीं जाऊंगा। कि क्यों भैया? कि मैं भिक्षा लाऊंगा, लोग भिक्षा देंगे, मेरे पास वो रोटी रहेगी तो मेरे से रहा नहीं जाएगा, मैं तो उसको खा जाऊंगा, फिर तुम क्या करोगे? इसलिए वो भिक्षा लेने नहीं जाता था। भिक्षा लेने चारों ही जाते हैं। भीमसेन वही अपने मां कुंती के पास रहते हैं। जिस मकान में जिस ब्राह्मण के घर ठहरे हुए थे, एक दिन उस घर के अंदर खूब रोना पीटना हो रहा था। कुंती ने ध्यान दिया नहीं, भीम ने ध्यान दिया। भीम ने कहा, मां इस घर में कुछ कोलाहल हो रहा है, कुछ रोध हो रहे हैं, इनको पूछो क्या कारण है। अरे सचमुच रो रहे, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। तब कुंती मां गई, क्योंकि स्त्रियों से स्त्रियां ही बात करने में सक्षम है, खुली बात कर सकते हैं। तो वो ब्राह्मणी थी, वो रो रही थी, उसके पास गई कुंती माता और बहुत प्रेम से कहा कि बहन रोती क्यों हो, क्या बात है, क्या हो गया? तो उसने कहा कि हमारे घर में खटपट हो गई। कि वही तो पूछती हूं, क्या खटपट है? कि हमारे यहां नगरी के पास में एक बकासुर नाम का असुर रहता है, उसने नियम बना रखा है कि प्रत्येक घर से एक आदमी आएगा, दो भैंसों का मांस आएगा, मांस ले आए, दो भैंसे ले आओ और 20 टोकरी अन्न, एक गाढ़ा अन्न का इतना मेरा खुराक रोज पहुंचा दो, हम नगरी में किसी को तंग नहीं करेंगे। तो नगर वालों ने विचार किया, अभी रोज एक एक घर से एक एक आदमी जाएगा, तो अब कल हमारा नंबर है। तो कुंती माता से कहा उस ब्राह्मणी ने कि मैं तो कहती हूं कि मैं जाऊंगी, मेरे लड़कों के पिता बोलते हैं कि मैं जाऊंगा, लड़का कहता है मैं जाऊंगा, और मेरी पुत्र वधु कहती है मैं जाऊंगा, पुत्र वधु कहती है मैं जाऊंगी। अब बताओ क्या किसी पत्नी को ये उचित लगता है कि वो पति को मरने के लिए भेज दे? क्या किसी मां को ये अच्छा लगता है कि अपने पुत्र को भेज दे? क्या किसी सासू को अच्छा लगता है कि मरने के लिए अपनी बहुरानी को भेज दे? पर ये सब मुझे मना करते हैं, इसलिए मैं दुखी हो गई। यदि ये मुझे हां भर दे तो मैं बड़ी खुशी खुशी चली जाऊं, खा जाएगा, मेरे पति बच जाएंगे, मेरा बेटा बच जाएगा, मेरी पुत्र वधु बच जाएगी। कुंती बहुत बुद्धिमती थी। कुंती ने कहा, उसके पति से कहा कि भी आप इसको भेज क्यों नहीं देते? तो उसके पति ने कहा कि देखिए कुंती जी, जब विवाह होता है तब पति के ऊपर ये दायित्व रहता है कि पत्नी की हर प्रकार से रक्षा करे। पत्नी है ये रक्षा है, रक्षा माने रक्षा करने योग्य है, ये पालनिया है, ये दूसरे घर से आई है, इसने कितना बड़ा त्याग किया है, माँ का त्याग किया, पिता का त्याग किया, भाई का त्याग किया, भौजाई का त्याग किया, वहां के धन पदार्थ का त्याग किया और मेरे पीछे यहाँ आई है। स्त्री जितना त्याग कोई दूसरा नहीं करता। मैं मेरे बाप के घर में बैठा हूँ, ये अपने बाप के घर में थोड़े ही बैठे हैं। और इसके बाप के पास खूब धन, अब मेरे पास तो है, उसी में इसको काम चलाना पड़ेगा। तो धन का त्याग, परिवार का त्याग, ऐसी स्त्री को पति मरने देगा? ये पति का तो धर्म नहीं होता कि खुद के आराम के लिए, खुद के जीवन के लिए अपनी धर्म पत्नी के जीवन को दांव पर लगा दे? ये तो अच्छा नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूं कि मैं चला जाऊं और मेरी पत्नी के प्रति मेरा धर्म पालित हो जाए। तो कहा कि देखिए जी, आप दोनों में आप एक पति हैं, एक पत्नी है, लेकिन बेटे का भी तो कुछ कर्तव्य होता है। बेटे से पूछता हूं। बेटे ने कहा कि माताजी आप ही बताइए, आपको आपके पांचों बेटा छोड़ते हैं क्या? आप विधवा हो गई लेकिन बेटों ने आपको कभी छोड़ा क्या? आप पर इतना संकट है फिर भी आपके पास पांच बेटा आपको हरदम चाहते रहते हैं। जीवन में माँ बाप मिलते कितने के हैं, और उसमें मनुष्य शरीर में जो माँ बाप मिलते हैं उनकी सेवा करने मात्र से कल्याण होता है। अलग से कोई भजन की जरूरत ही नहीं। अलग से माँ बाप की सेवा को तो छोड़ दो, जाके भजन करो और कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। हमारा धर्मशास्त्र कहता है जिन माता पिता के चरणों में प्रणाम करने मात्र से कल्याण होता है, और पुत्र होता ही पिता की और माता की आज्ञा पालन करने के लिए, पिता और माता जो चाहे उसको पुत्र पहले ही बिना कहे कर दे, वो श्रेष्ठ पुत्र होता है। पिताजी कहे और उसके बाद बेटा करे तो वो दो नंबर का बेटा होता है, मध्यम पुत्र होता है। पिताजी कहते रहे और बेटा करे नहीं, वो तो अधम पुत्र होता है, महान निकृष्ट निम्न पुत्र होता है। पुत्र नहीं है वो, तो पिता का मलमूत्र है, पुत्र नहीं है। मैं माँ बाप में से किसी को भेज दूंगी, जाओ बकासुर के यहां भोजन में चले जाओ, ये मेरे आंखों के सामने कैसे संभव है? क्या अभी पांचों भाइयों पर कोई कष्ट आए तो माताजी उस कष्ट को दूर करने के लिए ये आपको आगे कर देंगे क्या? युधिष्ठिर है, भीम है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव, आपको आगे कर देंगे? माताजी आप मर जाओ, हम यहां बैठे आराम करते हैं। कुंती माँ ने कहा मेरे बेटे ऐसा नहीं, तो फिर मैं अपने माँ बाप को कैसे मरने दूंगा? पुत्रवधू ने कहा कि देखिए आपने पति और पत्नी का संबंध देख लिया ना, मेरा ये मेरे पति है, मैं इनको कैसे जाने दूं? ऐसे करके इनकी बातें हुई तो कुंती ने कहा कि देखो अभी आप रुक जाओ, जाओ आओ कहीं मत, तुम सब धर्म की बात करते हो, तो मैं भी अपने एक धर्म की बात कह दूं कि आप क्या कहोगी माताजी? कि देखो आपके घर में हम रहे, हम आपके मेहमान के रूप में रहे यहां। जो आदमी किसी के घर थोड़ी देर भी आज रह जाता है, उस घर का सारा सुख दुख उस आदमी को मिलता है। तो मेरा एक कर्तव्य है कि मैं आपके सुख में सुखी रही तो मैं आपके दुख में भी सहभागिनी बनूं। मैं अतिथि हूं ना आपकी, अतिथि को तो केवल ये आत्मीयता के साथ रहना चाहिए, अतिथि को अतिथि होकर के नहीं रहना चाहिए। आप लोगों ने तो अतिथि माना, ये आपका धर्म, मेरा धर्म है कि मैं अपनत्व के साथ आपके साथ व्यवहार करूं। आप मेरे, मैं आपकी अतिथि हूं इस दृष्टि से नहीं रहूंगी, मैं आपकी खास इस परिवार की हूं ऐसा मैं रहूंगी। न तो आपका बेटा कोई जाएगा, न आपका कोई पति जाएगा, कल जाएगा तो मेरा बेटा जाएगा। कि यह कैसे संभव है? मेरा बेटा जाएगा, आपके बेटे को नहीं जाने दूंगा। और उस ब्राह्मणी से कहा कि बहन तुम्हारे पति नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा तुम्हारे पास, मेरा बेटा जाएगा, मेरे तो पांच है, एक कम हो जाएगा तो जाएगा। तुम लोगों के घर में रह गई और तुम्हारे संकट को मैंने अपना संकट नहीं समझा, तो फिर यहां रहना तो पशुओं के समान रहना हुआ हमारा। घर में तो चूहे भी रहते हैं, चींटी चिड़ी कमेड़ी उंदर घर ही में घर कहता, सांप बिच्छू भी तो यहां रहते हैं। हम कोई सांप बिच्छू बनकर थोड़ी आए हैं, हम तो आदमी थे। मेरा बेटा जाएगा, मेरा बेटा कोई नहीं जाएगा। सबको कुंती माता ने दबाव से कह दिया, और ये दबाव लगता भी अच्छा है। कुंती ने जाकर अपने बेटे से कहा कि भीम भैया, भीम बेटा, ये हो रही है समस्या इनकी, इनके समस्या ये हो रही है कि कल बकासुर का। अच्छा अच्छा माँ, आपने क्या किया? मैंने तो कह दिया कि मेरा बेटा जाएगा, बस माँ बहुत अच्छा है, यही मैं चाहता था। ऐसे मौके पर मेरे को आगे कर दिया करो। अब दूसरे दिन वो भीमसेन गया, वो बकासुर का आगे, भाई गाड़ा पर सामान आना चाहिए, दो भैंसा आना चाहिए, तुम अकेले कैसे आए हो? तुम्हारे अकेले से मेरा भोजन थोड़ी हो जाएगा। अब भीमसेन ने उसको कहा, देखो भाई, मैं यहां भोजन करने आया हूं, भोजन कराने नहीं आया, तेरा भोजन आज मैं करूंगा। क्या उस बकासुर को वहां मारा है भीमसेन? अब दुशासन को ज्यादा मारा कि बकासुर को मारा, ये तो क्या कहे, मारा बहुत भीमसेन ने बकासुर, ऐसा मारा उसको कि उसके प्राण निकल गए। सारे नगर के अंदर बात फैल गई कि बकासुर को कल इस ब्राह्मण परिवार ने जाकर मार दिया, वही ब्राह्मण कौन है, बड़ा स्वागत हो। अब कुंती ने उन सबने कहा, देखो नाम हमारा मत लेना, हम यहां छिपे हुए रहते हैं, हमारा नाम मत लेना, हमारा नाम ले दोगे तो हमारा ज्ञान सब जगह हो जाएगा, और अभी हमारे लोग पीछे लगे हुए हैं। ऐसे भीमसेन भगवान कृष्ण के अंदर भीमसेन जैसा गुप्त अनुराग, छिपा हुआ अनुराग शायद ही किसी का हो। भगवान में बड़ी गुप्त भक्ति थी भीमसेन जी की। एक तो आपको कल परसों बताई थी, भोग लगाए भोजन, तो उनका कि भाई मैं मंत्र मंत्र को जानता नहीं हूं, सामने भोजन रख दिया और भूख लग रही है, अब मैं मंत्र बोलूंगा जितने मेरे से रहा नहीं जाएगा, उठा गदा फेंक, कृष्ण आओ बचाओ, मैंने तो गदा आपके भरोसे फेंक दी है, ये गदा गिरेगी मेरा सिर फूट जाएगा, मैं कुछ नहीं जानता, अब ये कोई मंत्र है क्या? गदा फेंक के नीचे सिर मादा कर दिया, भगवान आए पकड़ लिया कि तेरे को अब भोग लगाने की जरूरत नहीं है बाबा, आराम से भोजन कर लिया कि तेरा तो भोग हम ऐसे ही मान लेंगे। राजसु यज्ञ हुआ युधिष्ठिर महाराज, उस राजसु यज्ञ के अंदर पता चला कि और तो सब राजा लोग हमारे अधीन है, हमसे प्रेम रखते हैं, स्नेह रखते हैं, एक राजा है जरासंध, वो हमसे खटपट रखता है। सब लोग बैठ गए, सो क्या करें जरासंध, युधिष्ठिर भी उदास, कृष्ण भगवान भी उदास, अर्जुन भी उदास, क्या करें इसका। भीमसेन कहीं बाहर गए हुए थे कोई काम से आए, भगवान कृष्ण से कहा कि कृष्ण आपकी मुख छवि तो हरदम खिली रहती है, आज गंभीर क्यों बनी हुई है, उदास क्यों है? तुझे क्या पता है, बड़ी भारी समस्या है। क्या समस्या है? जरासंध वाली समस्या है, तो जरासंध की समस्या है, तो मेरे को ले चलो, मेरे को ले चलो, सब समस्या का समाधान कर दूंगा। भगवान ने कहा वो बहुत बलवान है, तो भीमसेन ने जो उत्तर दिया है ना, उसके बाद भगवान की बोली बंद हो गई। भीमसेन ने किया उत्तर दिया कि त्वद बुद्धि बलम आश्रित्य, आपके बुद्धि बल का आश्रय लेकर मैं युद्ध करूंगा। तो क्या आपके बुद्धि बल से भी ज्यादा बलवान है क्या जरासंध? यदि आपके बुद्धि बल से, आपके कृपा बल से ज्यादा बलवान हो तब तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन आपकी मेरे पर कृपा है, आपका बुद्धि बल मुझे मिला हुआ है, आपका वरदहस्त मेरे पर है। जयो अस्माकमी गोविंद ये शाम नाथो भगवान सदा, जिनके ऊपर आपकी कृपा रहती है उनकी हमने आज तक पराजय नहीं सुनी, अब हमारी पराजय कैसे होगी, हमारी हार कैसे होगी? तब कहा कि ठीक बात है। भगवान ने कहा चलो, ब्राह्मण का वेश बना लिया तीनों ने। भीमसेन ने कहा आक्रमण क्यों नहीं करते? नहीं, आक्रमण नहीं करना, आक्रमण करने से अनेक निरपराध प्राणी मारे जाएंगे, आक्रमण नहीं करना है। द्वैरथ युद्ध करना है, द्वैरथ दो रथों वाला युद्ध, दो जने युद्ध करना है। ब्राह्मण का वेश बनाओ। भीमसेन ने कहा कि ब्राह्मण का वेश तो कुछ याचना करनी हो तो करें, कि याचना ही करनी पड़ेगी, कि काय की याचना करनी है कि लड़ाई की याचना। चलो तीनों ब्राह्मण बने। जरासंध ने ब्राह्मणों को सुबह दान देने की प्रतिज्ञाएं कर रखी थी, रोज दान देता था, जो आवे ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ। ऐसे दान में ब्राह्मण आते 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 कृष्ण भगवान तो बीच में है, इधर अर्जुन है, इधर भीम है, या इधर भीम है, इधर अर्जुन है, बीच में कृष्ण भगवान है। तो देखो ये यूं खड़े नहीं हुए कि इधर कृष्ण और पीछे अर्जुन और यूं भीम, यूं नहीं हुए, ये यूं खड़े हुए। अच्छा भाई कौन हो आप? कृष्ण भगवान के हम बहुत दूर से आए, बहुत दूर देश से आए, हमने सुना है कि आप बड़े उदार हो, ब्राह्मणों को आप मनचाहा दान देते हो, ब्राह्मणों के बड़े प्रेमी हो, अपनी बात की रक्षा करने वाले हो, हमने आपकी महिमा सुनी है, हमको कोई आवश्यकता हुई इसलिए हम आपके पास आए हैं। भगवान की बोली का लटका स्वर ये कुछ कुछ उसके पहचानने में आ रहा था कि इस व्यक्ति को कभी देखा है, गौर से देखता है भगवान, बहुत गौर से कि देखा लगता है कौन है क्या है। फिर मन में सोचा कि कोई कपटी भी आ सकते हैं, वेश बदल के भी आ सकते हैं। खैर मैं तो ब्राह्मण ही समझू, मेरा लाभ तो इसी में ही है, क्या मांगेंगे ज्यादा ज्यादा, मेरी जान मांग लेंगे, जान दे दूंगा और क्या है। ये तलवार पड़ी है, वो तलवार भी साथ में रखता था, उदार बहुत था। देखो ये जितने दैत्य थे, दानव थे, या जो खलनायक थे, उनमें कई बातों की विशेषताएं भी थी। महाभारत का खलनायक है दुर्योधन, उसमें विशेषता थी। विशेषता क्या थी कि वो जितना खर्च करता उतना ही उसके कोठार दुगुना हो जाता था। राजसूय यज्ञ के अंदर महाराज युधिष्ठिर ने भंडार का काम दुर्योधन को दिया। दुर्योधन मन में बहुत राजी हुआ, शकुनी भी वहीं था, दुशासन भी वही था, जितने ये महाभारत की चंडाल चौकड़ी, कर्ण के लिए तो नहीं कह सकते था कि नहीं पता नहीं, पर बाकी ये तीनों थे। महाभारत में इसमें चंडाल चौकड़ी बोलते, तब से चंडाल चौकड़ी नाम चालू हुआ है। ये चार जने जहां कमरे में बैठ करके गोष्ठी करते, ये चंडाल चौकड़ी जाने क्या करेगी। शकुनी ने कहा कि ऐसा मूर्ख तेरे को भाई मिला है, तेरे को यहां भंडार का अध्यक्ष बना दिया, कोषाध्यक्ष बना दिया इसने, खूब खर्च कर, खूब खर्च कर, ताकि अंत में खाली हो जाएगा ये कोष, उसके बाद तुम्हारे भाई की बदनामी होगी और सब राजाओं के मन में तुई तुई हो जाएगी और आइंदे कभी ये यज्ञ करने लायक नहीं रहेगा। खूब खर्च कर। दुर्योधन ने आते ही लुटाना चालू किया, आते ही लुटाना चालू किया। भीमसेन वगैरह ने जाकर युधिष्ठिर महाराज से कहा, महाराज दुर्योधन तो अयोग्य व्यक्तियों को भी लुटा रहा है, ले जाओ हीरे, ले जाओ मोती, ले जाओ ये, ले जाओ। ऐसे तो ये दो दिन में हमारा तो कोष खत्म हो जाएगा, ये इसके हाथ से पद हटाओ, दूसरे को दो। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, नहीं, मैंने बहुत सोच समझ के दिया है, कोई चिंता मत करो, चिंता ही मत करो। अब वो दे देते, खूब देता, रात को बस भर जाता भंडार, फिर जो है भंडार भर जाता। दुर्योधन देखता कि युधिष्ठिर के पास जाने कितनी संपत्ति होगी, मैं दिन में खाली कर देता हूं, रात को पूरा भर जाता, बात क्या है। अब है तो खुद की विशेषता, लेकिन खुद को ज्ञान ही नहीं, यही दुर्योधन में विशेषता था। देखो हर आदमी में विशेषता होती, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे कोई, हर आदमी में गुण होता है, हर आदमी में अवगुण हो ये जरूरी नहीं है। हर आदमी में गुण है ये जरूरी, चाहे कोई कितना ही पापी हो, कितना ही कसाई हो, कितना ही बेईमान हो, फिर भी उसमें कोई न कोई गुण नहीं। कारण क्या है? कारण यह है कि हर प्राणी परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश होने से भगवान का गुण उसमें आएगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भगवान का अंश होने के नाते उसमें भगवान के गुण रहेंगे, लेकिन अवगुण रहे हर आदमी, कोई न कोई अवगुण रहे, ऐसा अवगुण नहीं मिलता। अच्छे अच्छे संत हुए, महापुरुष हुए, गीता के अंदर जितना स्थित प्रज्ञ का लक्षण देख लो, भक्तों का लक्षण देख लो, ज्ञानियों का लक्षण देख लो, कहीं पर भी कोई अवगुण की बात नहीं आती, अवगुण नहीं आता। कुछ न कुछ अवगुण रहे तो ये तो गीता तो बोलती ना, भगवान कहते तो सही कि देखो भाई जो भक्त हैं उनमें ये अवगुण रहता है, भक्तास्ते अतीव मे प्रिया, यो मद भक्त समय प्रिय है, यो मद भक्त समय प्रिय है, भक्तिमान में प्रियो न रहे। ऐसे दिया भगवान ने पद दिया, क्यों उनमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहती, संसार से ऊपर उठा नहीं, सब कमी पीछे रह जाती है। जो ही प्राणी अपने को भगवान से जोड़ लेता है कि मैं भगवान का हो गया, अब उसके बाद उसमें कोई कमी नहीं आ सकती। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हम बहुत दूर से आए हुए ब्राह्मण हैं और हम आपसे कुछ लेने के लिए आए हैं। बोले बोलो क्या लोगे? मेरा यदि तुम प्राण भी लोगे तो ये तलवार नहीं, ले लो प्राण। भगवान कृष्ण का अरे राम 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 राम, हम तलवार से आपका सिर काटे राम राम, ऐसे ब्राह्मण थोड़े ही नहीं, ऐसे ब्राह्मण नहीं। तो हम तो और ही ढंग के ब्राह्मण हैं, तो बोलो ना क्या चाहते हो? हम युद्ध चाहते हैं, युद्ध चाहकर मेरे को मारोगे? मैंने कहा ना तलवार पड़ी, ना ना ऐसा नहीं। ब्राह्मण होता है, सिंह होता है, ये अपना हक स्वयं बनाकर खाते हैं। सिंह दूसरे का शिकार नहीं खाएगा, दूसरे का मारा हुआ होगा नहीं खाएगा, मगर वो अपना ही होता है। ऐसे ही ब्राह्मण दूसरे का नहीं खाया जाता। तो अभी तुम क्या चाहते हो कि हम युद्ध चाहते हैं और कुश्ती युद्ध चाहते हैं, केवल आपसे चाहते हैं हम तीन में से किसी के साथ, तो फिर हो कौन? कुश्ती झगड़ने वाले, लड़ने झगड़ने वाले ब्राह्मण तो नहीं होते। भगवान ने कहा मुझे पहचानो। तब कहा कि आपको देखा हुआ तो है, कहां देखा, कैसे देखा, पूरा याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आया? याद कराऊं? आप मथुरा आए थे, 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आए थे, वहां पर आपको मार मार के किसने भगाया? अरे तू वासुदेव कृष्ण है, ओ हो, 18वीं बार तूने ही तो पीठ दिखाई थी ना, पीठ दिखा के भग गया था ना तू, ओहो कैसा बोलता है, तेरी आवाज में वही मिठास, तेरी दृष्टि में वही प्रियता, तेरे अंदर शत्रु का भाव है ही नहीं कृष्ण, तू चाहे हमको मारपीट के भगाया गया होगा, हमारा धन भी छीन लिया होगा, लेकिन तेरी सकल सूरत पर कहीं पर भी शत्रुता नहीं दिखती। क्या बताऊं कृष्ण, एक आत्मीयता दिखती, ऐसा लगता है तू मेरा है। अब तू कहता है युद्ध करो, अब तुम्हारे साथ कैसे युद्ध करूं? मुझे तो उस दिन बड़ा पश्चाताप हुआ, तो पीठ दिखा के भगा, तो मेरे मन में बड़ा दुख हुआ कि बेचारे को मैंने भगाया, अच्छा नहीं किया, तेरे साथ अब कोई युद्ध नहीं करूंगा भैया, पीठ दिखा के भग गया। ये कौन है? कि ये मेरा भुआ का बेटा अर्जुन है। अच्छा, अर्जुन का भी नाम तो सुना है, कृष्णार्जुन कृष्णार्जुन कृष्णार्जुन, अच्छा यही अर्जुन है क्या? हाँ यही अर्जुन है, तो आपकी भुआ का बेटा है। लेकिन आप दोनों की शक्ल एक जैसी नहीं थी, पता ही नहीं चलता, दोनों का शरीर गठन भी एक जैसा लगता है जैसे सगे भाई हो। कोई बात नहीं, भुआ का बेटा है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसा ही लगता है तो उसके साथ क्या युद्ध करो, इसके साथ युद्ध नहीं। ये तीसरा कौन है? दृष्टपुष्ट, ये भी मेरे भुआ का बेटा है। अरे ये भुआ का बेटा क्या, क्या नाम है इसका? इसका नाम भीमसेन। भीमसेन इनका नाम है? हमको किसी ने बताया था कि भीमसेन बहुत बलवान है, भीमसेन ऐसा है, भीमसेन यूं है, बताया तो था लोगों ने। गुरु द्रोणाचार्य के पास में आप लोगों ने विद्या अध्ययन किया था क्या? अर्जुन ने कहा द्रोण का प्रिय शिष्य मैं हूं। अच्छा, तो ठीक है, द्रोणाचार्य के द्वारा तुमने गदायुद्ध भी सीखा होगा ना? भीम बिल्कुल सीखा है। तो लो ये हमारी गदा ले हो, अब आता है बीच में। भीमसेन उस समय थोड़े अभिमान में आ गए, खूब बड़ा घमासान, दोनों का युद्ध हुआ 27 दिन तक, महाभारत तो 18 दिन ही हुआ, यह 27 दिन युद्ध हुआ। महाभारत के 18 दिन के युद्ध में अनेक शस्त्रों से लड़ता लड़ता भी भीमसेन घायल नहीं हुआ, यूं हारा नहीं, मन में नहीं आए कि मैं छोड़ के भग जाऊं, जबकि जरासंध से तो बड़े प्रबलतम वह योद्धा थे, मन में नहीं आई मैं चला जाऊं, यहां मन में आएगी। 27 दिन लड़ाई हुई, 27वें दिन रात्रि के अंदर वो कृष्ण से कहे मैं तो सुबह भग जाऊंगा यहां से चुपचाप। क्यों? ये भगने की तो लक्षण है, बताओ, तुम दोनों आराम कर रहे हो, मैं मर रहा हूं यहां अकेला, मैं तो जाऊंगा यहां से, बहुत मारा है मुझे, इतनी चोट पहुंची है, मैं सोता हूं तो करवट नहीं ले सकता, बैठ नहीं सकता, बहुत मुश्किल हो रही है। भगवान ने कहा इतने दिन तुमने हमको कुछ कहा ही नहीं, ये कैसे कहता कृष्ण, मेरे मन में ये था कि मैं बहुत बलवान हूँ, ये छोटी बात तुमको क्या कहूँ, तो अब मेरे मन से निकल गया, मेरे से बलवान कोई संसार में हो सकता है, ये मेरे अंदर भावना बैठ गई। पहले मेरे अंदर कोई नहीं होता, मेरे से बढ़कर कोई है ही नहीं, तुमसे बढ़कर कोई है ना, हो सकता है साहब। अच्छा, तुम्हारा अभिमान यूं ही था, कायदे से था कि महाराज मेरा अभिमान तो यूं ही था, बिना मतलब का अभिमान, फालतू का अभिमान, उसके कारण से मेरे मार पड़ी। भगवान ने कहा तुम्हारे कहां कहां चोट लगी, मेरे तो तिल तिल में चोट ही चोट है, सारा शरीर चोटी लहरी है, चोट खाया हुआ है। भगवान ने उसके सारे शरीर पर हाथ फेरा, दम स्वस्थ, एक क्षण में स्वस्थ हो गया भीमसेन। भीमसेन ने कहा कृष्ण इतना तुम्हारा प्रभाव है, स्पर्श करते ही दम स्वस्थ हो गए हम, तो जरासंध से भी बड़े बलवान हो, किसी को मूर्छित कर देना, किसी को घायल कर देना, किसी को चोट पहुंचा देना, ये तो योद्धाओं का है, लेकिन किसी को आराम पहुंचा देना, ये कितनी बड़ी मुश्किल, कितनी बड़ी पराक्रम की बात है। हाथ का स्पर्श करते ही आराम हो गया, आप बहुत बड़े योद्धा हो। भगवान ने कहा कि कल आप युद्ध करना और मेरी तरफ देखते रहना बस। अब आप सब जानते हो भयंकर युद्ध हुआ, और वो अब जरासंध को देखे ही नहीं, भगवान उन्हें, भगवान कह रहे ऐसे नहीं, वो स्थूल बुद्धि वाला यूं देखे भगवान को, उसके साथ वो लड़ाई में कृष्ण को कहा मेरे को, भगवान कहे ऐसे नहीं, वो क्या बोले भगवान, बोल सकते नहीं, भगवान जरासंध के पीछे गए, जरासंध के पीछे, तो वो यूं देखे जरासंध के पीछे भगवान। भगवान ने कहा अब इसको कैसे समझाऊं। फिर भगवान जरासंध से बचते हुए उन्होंने इशारा कर दिया, जैसे टहनी को तोड़ते हैं ना बीच में से, ऐसे इसको तोड़ो, गदाओं से तो और बलवान हो जाएगा। फिर उसको कई दाव आते थे, भीमसेन को पकड़ उठाकर घुमाया है, घुमा करके पटक करके हर दो टुकड़े कर दिए, दो टुकड़ों को फेंक दिया, क्योंकि जरा नाम की एक राक्षसी ने, बात क्या हुई, एक राजा के यहां लड़का हुआ, वो लड़का पैदा होते ही बद्दी सूरतकार बहुत बुरी तरह से करके रोने लगा, उसके दो टुकड़े हुए थे, दो टुकड़े, आधा टुकड़ा एक रानी से, आधा टुकड़ा एक रानी से, बहुत भद्दा। राजा को कहा किसी ज्योतिषी ने कि आपके यहां बहुत बड़ा उपद्रव हो जाएगा, क्लेश में पड़ जाओगे, आप इनको बाहर फेंक दो। तो एक रानी ने अपना टुकड़ा फेंक दिया, दूसरी रानी ने अपने महल से दूसरा टुकड़ा फेंक दिया, उन्हीं महलों के आसपास झूठा वगैरह खाने वाली, निर्वाह करने वाली जरा नाम की राक्षसी घूमती रहती थी। उसने देखा कपड़े में लिपटा हुआ क्या है, तो एक आधा शिशु, उसको भी देखा तो आधा शिशु, यूं देखने लगी क्या है, एकदम जुड़ गए वो दोनों, जो ही पास में लाए जुड़ गए। तो जरा के द्वारा संधित होने के कारण से, जुड़े हुए होने के कारण उसका नाम जरा संध पड़ गया। फिर वो बड़ा हो गया, फिर पराक्रम दिखाया, राजा हो गया, फिर जरासंध की अपनी कथा थी, वो जरासंध से तोड़ने से ही वो मरा। तो भीमसेन ने कहा कि देखो प्रभु, वहां से रवाना हुए तब कि मनुष्य अपना बल रखता है तब तक मनुष्य को कितना कष्ट उठाना पड़ता है, और यदि आप पर ही डाल दे, आप जानो आपका काम जानो। एक आदमी के भयंकर बीमारी में तकलीफ थी, बहुत भयंकर तकलीफ। एक संत आए, उन्होंने कहा कि देखो इस बीमारी को और इनको सबको भगवान पर डाल दो, छोड़ दो अपने मन का संकल्प कि मैं स्वस्थ कैसे होऊंगा, मैं कैसे ठीक, तुम भगवान पर छोड़ दो, मेरी मर्जी है जैसा करो। शरीर तो एक दिन वैसे ही जाएगा, अभी जाए तो अभी जाए, बाद में जाए तो बाद में जाए, ये बीमारी ठीक हो चाहे न ठीक हो, मैं ये आप पर डाल दूंगा, ऐसे भगवान पर डाल दो तुम निश्चिंत हो जाओ। तो उस आदमी ने वो अपना सब कुछ भगवान पर डाल दिया, ये भगवान अब आप जानो आपका काम करें। इतना करते ही उसके शरीर में होने वाला जो कष्ट था वो कष्ट उसको नहीं नहीं कष्ट नहीं नहीं। डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब तुम्हारे दवाई लग गई है, धीरे 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 तुम ठीक हो जाओगे। उसने कहा ठीक हो जाएंगे तो क्या, नहीं होंगे तो क्या, होगा जैसा होगा। वो बिल्कुल उपेक्षित हो गया और वो अंत में जाकर स्वस्थ हो गया। ये जरूरी नहीं है कि हमारे भी कोई स्वस्थता ऐसी बीमारी आ जाए स्वस्थ हो जाए, ये जरूरी नहीं है। पर ये जरूरी है कि हृदय से भगवान पर डाल देंगे तो मन के अंदर जीने की मरने की कोई इच्छा नहीं होगी, मरने का कोई दुख नहीं होगा और बीमारी का भी कोई विशेष कष्ट नहीं होगा। महाराज जी कहते थे कि एक दर्द होता है और एक दुख होता है। दर्द तो होता है अपनी जगह पर, दुख होता है वो मन में होता है, मन में। तो बीमारी का दर्द हो सकता है पर उसको बीमारी का दुख नहीं होता। दुख होता है उसमें कोई न कोई संकल्प जुड़ता है ना, तब दुख होता है। ये बीमारी आ गई अब मैं मर जाऊंगा, जी जाऊं तो बड़ा अच्छा है, ये जीने का जो संकल्प है इससे दुख पैदा होता है। एक बीमारी नहीं, जितने संसार के दुख हैं उन दुखों के पीछे कोई न कोई हमारा संकल्प रहता है। ये संकल्प भगवान पर डाल दिया जाए, दुख नाम की चीज खत्म हो जाएगी। भीमसेन ने कहा महाराज मैंने तो व्यर्थ में ही अपने पर लिया भार, पहले से ही मैं आपसे पूछ लेता कि प्रभु बताइए मैं क्या करूं, कैसे युद्ध करूं, तो इतना मेरे को समय नहीं लगता। भगवान ने कहा कि देखो जितनी चोट पड़ी थी जरासंध की वो भीमसेन पर नहीं पड़ी, भीमसेन के अंदर छिपा हुआ घमंड था उस घमंड को पड़ी है। जैसे कोई किसी को प्रेत लग जाए और प्रेत लगने पर उसको पीटते हैं तो शरीर तो उसी का ही दिखता है लेकिन दर्द उसको होता है भूत को प्रेत को होता है। इसी प्रकार तुम्हारे अंदर अहंकार रूप प्रेत था उसकी पिटाई हुई है। ऐसे थे राजसु यज्ञ पूरा करके भगवान वहां से रवाना हुए तो दारुक ने कहा चलो महाराज मैं आपको द्वारिका ले चलता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा कि दारुक तुम तो हरदम चलाते ही रहते हो रथ, आज मेरे भाई लोग चलाएंगे। तो अर्जुन था वो रथ हांकने लगा, दूसरे भाई थे वो छड़ी छत्र लिए और भगवान के ऊपर छत्र लेकर के भीमसेन चलाई, छत्र ले लिए भगवान। इतना भगवान में प्रेम, भगवान भी भीमसेन से बहुत मजाक करते रहते थे। एक बार भीमसेन गया द्वारिका, भोजन का समय था, भगवान ने देख लिया कि हाँ भीमसेन आ रहा है, भोजन का समय है। तो भगवान कमरे में बैठ गए एक जगह भोजन की जगह, दरवाजा बंद कर दिया और अपने सेवकों से कह दिया कि भीमसेन को कहना कि अभी वो अभी नहीं आए, अभी हम नहीं मिलेंगे। भीमसेन वहां जोर जोर से बातें करता है, जोर जोर से बोलता है कृष्ण अकेला कैसे खाते हो तुम, तुम्हारे ब्रज की आदत गई नहीं, तुम वहां चोर चोर के खाते थे, यहां छिप छिप के खाते हो, ऐसे करके खूब बोला। तो भगवान को जोर से हंसी आ गई, हंसी आई, उसको बुला करके कहा क्यों बकता है तू इतना, क्या हो गया? उसने कहा मैं नहीं बक रहा हूं, तो अंदर से भूख बक रही है, तभी बैठा के खूब बड़े प्रेम से भोजन कराया। जान के भगवान ने मजाक की, अपने हाथों से परोस परोस करके भगवान ने उसको छका दिया। ऐसे ही भीमसेन पांडवों में से दो हो गए और कल अर्जुन की बात चलेगी। देखो भाई आज गोस्वामी जी महाराज की जयंती है। गोस्वामी जी महाराज के लिए बोलते हैं कि सावन सुदी सप्तमी के दिन ही उन्होंने जन्म लिया, और कई कहते हैं सावन सुदी सप्तमी में उनका शरीर शांत हुआ, कई कहते हैं कि दोनों ही काम इसी के दिन हुआ, ऐसे भी बोलते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस लिख करके एक बहुत बड़ा समाज का उपकार किया, राम की जो लीला लिख दी और समाज के अंदर बहुत बड़ी शिक्षा दी। ये रामचरित्र की शिक्षा वाल्मीकि रामायण में इतनी नहीं मिलती, दूसरे रामायणों में नहीं मिलती। ये भगवान के राम जी के चरित्र की शिक्षा जितनी तुलसीदास जी से मिलती है उतनी किसी से नहीं मिलती। तुलसीदास जी महाराज की चौपाइयां वेद मंत्र के समान है, क्योंकि तुलसीदास जी ने जिस साधना में अपने जीवन की अंतिम कृति में रामचरितमानस लिखा है, तुलसीदास जी का विनय पत्रिका का जो भाव है वो दीन भाव है, और उसके बाद उन्होंने ये रामचरितमानस लिखा है। तो रामचरितमानस के द्वारा सृष्टि का बहुत बड़ा उपकार, खास करके भारतवर्ष का उपकार, और खास करके सत्य सनातन हिंदू धर्म का बहुत बड़ा उपकार किया है। ऐसे तुलसीदास जी महाराज को हम लोग बड़ी श्रद्धा से नमन करते हैं। बोलो
जय सीताराम सीताराम।